Hansana, Panavidhayana, Nirakshira Hansana, Panavidhayana, समाधि पीठ पर उपस्थित हुए आज उनकी विरस्ति है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बताया, जिनके पाद पद्म धूलि ही हम लोगों के एकमात्र जीवन के आधार हैं, वे श्रील रूप गोस्वामी पाद हम सबके जीवन के एकमात्र जीवातु हैं, जिन्होंने महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए ब्रजभूमि में निवास किया। जिस समय ब्रजभूमि एक प्रकार से जंगल में परिपूर्ण वृंदावन था, सारा उजाड़ पड़ा हुआ, वीरान पड़ा हुआ, सारे स्थान लुप्त था, महाप्रभु जी आए और प्रयाग में लौटते समय महाप्रभु जी श्रील रूप गोस्वामी जी को प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से वृंदावन धाम आए, यहाँ पर उन्होंने निवास किए और यहीं पर भजन करते हुए उन्होंने लुप्त वृंदावन को पुनः प्रकाश किया, श्री विग्रह को प्रकाशित तथा भक्ति ग्रंथ का प्रणयन शुरू किया। महाप्रभु जी ने भक्ति सूत्रों का वर्णन किया और उसको पारिवार के रूप में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने ही उन्हीं को विस्तार किया है। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद जिन्होंने यहां से श्रील भक्ति रसामित सिंधु, श्री भक्ति रसामित सिंधु, श्री उज्जवल निर्मणि, हंसदूत, पद्मावली, ललित माधव, विदग्ध माधव आदि नाटक, लख श्लोकित कई राधा कृष्ण लीला विस्तार, 1,00,000 श्लोकों में जिन्होंने राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का विस्तार किया। इस प्रकार जिन्होंने भक्ति रस को प्रकाशित किए हैं तथा वैष्णव सदाचार भजन प्रणाली ये सभी कुछ उन्होंने विस्तार किया है। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद जो कि महाप्रभु जी के अत्यंत अंतरंग जन है, जिन्होंने स्वयं महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के लिए सभी भक्तों से प्रार्थना की, आप सभी लोग अनुग्रह करें जिससे कि उनके अंदर में भक्ति रस का संचार हो। सभी भक्तों ने कहा, प्रभु जब आपने अनुग्रह किया है इस प्रकार आपके अनुग्रह को प्राप्त हुए तो उनके लिए कोई अवशेष रहता है? जो महाप्रभु जी के हृदय के भावना को किसी के समझ में नहीं, ऐसे मनोभीष्ट को भी भाव को उघाड़ करके प्रकाश किए, भक्ति रस का पुंखानुपुंख रूप में ऐसा विवेचन जो कि विश्व में एक अनुपम उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी पाद है। इसलिए सारे संसार जिनके चरणों में नतमस्तक हुए हैं और उन्हीं की कथाओं के अतिरिक्त और कोई आधार नहीं, कोई सहारा नहीं, एकमात्र यही पंथा है। इसलिए हम लोगों की पद्धति को कहा जाता है, जो हम लोग श्रील रूप गोस्वामी जी को एकमात्र आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके चरण धूलि ही हम सबके जीवन के एकमात्र स्वरूप हैं, जो कि प्रिय स्वरूपे, दैत स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहजाभि रूपे, निजानुरूपे, प्रभुरेक रूपे, ततान रूपे, सबिलास रूपे, जो कि प्रिय स्वरूपे, दैत स्वरूपे, केवल प्रिय नहीं अत्यंत अंतरंग जान, जो प्रिय दैता के रूप में, जो कि दैत के रूप में अत्यंत घनिष्ठ और जो कि प्रिया के रूप में, ऐसे दैता श्रील रूप गोस्वामी पाद जो स्वयं श्री राधा जी के रूप के अवतार, जो कि श्री रूप मंजरी के रूप में उनको वर्णन किया गया है, इस प्रकार प्रेम की मूर्ति हैं, भाव की मूर्ति, जो कि श्री राधा जी के सभी प्रकार के भावों का विश्लेषण उन्होंने जिस रूप में किया है आज तक संसार में कोई भी आचार्य इस रूप में वर्णन नहीं कर सकते जितना उन्होंने वर्णन किया। जो कि प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि करके भावों की जो पराकाष्ठा है सभी का विश्लेषण तथा श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक चयन करते हुए कैसे श्री व्यास जी ने भागवत के श्लोकों में कौन कौन भावों को व्यक्त किया है जो किसी को भी पता नहीं, श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत की व्याख्या श्री उज्जवल मणि में करते। इस प्रकार जो कि महाप्रभु जी के एकमात्र निजान रूपे उनके स्वरूप में उनके मनोभिष्ट को भावों को व्यक्त करने वाले ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में हम लोग पुनः पुनः नमन करते हैं। आज उनके स्थान पर आए हैं उनकी चरण धूलि यहाँ के धूलिगण हम सब के लिए कृपा भाजन बनाए। इतना कह करके मैं अपना वस्तु कहीं रखता हूँ। वंशा गुरुद्रुवस्य कृपा सिंधु परितानं पावनं
गुरवे गौरचंद्राय नारिताय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जीन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति आद्दानस्तेनं दन्तैरीजं व्यासो पुनः पुनः श्रीमद्रूपदाम्भोज धूली शान्मम जन्म जंकली रूप शरीर तम प्रेम महानिधि कुठरी को कपाट कौन उधार। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी नहीं आते जगत में तो राधा कृष्ण के प्रेम को चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को जो प्रचार करने के लिए आए थे उस प्रेम महानिधि की कुठरी खजाना उसको कौन जगत के लिए खोल देता। जो आज जगत के लोग सभी लोग उससे परिचित हुए और रूपानु गुरु वर्ग काने में हम रूपानुग हैं काने में गर्व बोध करते हैं तो ऐसे ये रूप गोस्वामी वन में तरह तरह के फूल खिलते हैं बेली चमेली जूई कमल किंतु उसको प्रकाश कौन करता है भ्रमर भ्रमर यदि न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। जिन फूलों पर भ्रमर नहीं जाते उनका कोई महत्व नहीं। इसी तरह से रूप गोस्वामी को भ्रमर कहिए और प्रेम स्वरूप राधा कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु को कहे। यदि रूप गोस्वामी नहीं होते और उनके मनोभावों को जान करके अभीष्ट को जान करके उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव कि शास्त्रों की युक्तियों पर प्रतिष्ठा नहीं करते तो सब लोग उसे घृणा करते और संप्रदाय के लोग पहले घृणा करते थे। ये इन लोगों में क्या है उपपति भाव का एकदम जगत में सबसे खराब चीज है। किंतु रूप गोस्वामी ने समस्त लोगों के तर्क वितर्कों का खंडन करके महाप्रभु के इस भाव को जो स्थापित किया इसीलिए उनको कहा गया श्री चैतन्य मनोभीष्टम
स्थापितम जिन भूतले।
उसके लिए उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामी सिंधु ग्रंथ लिखे गए उसके लिए और सब ग्रंथ लिखे गए सभी में वही उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव की ही विशेषता दिखाई गई है। पहले इसको बहुत घृणित समझते थे इसलिए रुक्मिणी सतभामा के साथ में विवाह में उनको बहुत महत्व दिया जाता था और संप्रदाय में वही अभी तक है भाव वही है सत्यभामा रुक्मिणी का नित्य मिलन का और विवाह इत्यादि का महत्व। यहाँ तक कि रामानुजाचार्य के फॉलोअर जो रामानुजी वैष्णव हैं उन लोगों ने तो इसके लिए चैलेंज ही दे दिया गोविंद मंदिर से राधा जी को निकाल दो ये उपपति भाव वाली है और इसके लिए बहुत विचार हुआ। हमारे रूपानुग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बलदेव विद्याभूषण को भेजा गौड़ीय वेदांताचार्य को, और उन्होंने खंडन मंडन करके सबको और पारकीय भाव की स्थापना की, और उसी के उपलक्ष्य में गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र की रचना करके और पंडितों को परास्त कर दिया। तो ये रूप गोस्वामी की महिमा है। इसलिए आददान स्त्रीणम दंतेरी दम जाचे पुनः पुनः श्रीमदरूप पदम भोज धूलि शाजन। हमारे पूर्व गुरुओं ने
पूर्व गुरुओं ने
ये सब किया।
ठीक है,
एक बात, चैतन्य यदि रूप गोस्वामी नहीं होते तो रूप मंजरी का जितना महत्व है उससे कोटि गुण महत्व रूप गोस्वामी का है। रूप मंजरी जी ने सेवा की, किंतु सेवा की प्राप्ति कैसे होगी ये उन्होंने स्थापित नहीं की। जीवों को ये नहीं बतलाया कि क्या करने से उपाय बद्ध जीव कलिजुग के लोग या और युगों के लोग
कैसे मिलेगा,
कैसे मिलेगा वह प्रेम महानिधि उन्नत उज्ज्वल रस कैसे मिलेगा, और उन्नत उज्ज्वल में भी संभोगमयी और भाव इच्छामयी, ये सब कौन समझाता। हाँ, तो क्या कह रहा था,
तो रूप गोस्वामी का मोह ने रूप मंजरी के प्रकाश करते हुए,
तो रूप मंजरी ने नहीं साधन बतलाया और कृष्ण ने भी नहीं बतलाया, राधा जी ने नहीं बतलाया, तो ये बतलाया कौन,
रूप गोस्वामी
ने अपने रूप स्वरूप से ये बतलाया।
कैसे भाव की,
कैसे
भाव की प्राप्ति होगी,
वो उन्नत उज्जवल भाव और उसमें भी तत्त्व इच्छित भावेच्छामयी उल्लास रति को कैसे पाया जाएगा ये रूप गोस्वामी ने दिया। इसलिए रूप गोस्वामी की कृपा रूप मंजरी की अपेक्षा भी इनकी कृपा
महत्वपूर्ण है,
महाप्रभु जी की कृपा बहुत अधिक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो चैतन्य महाप्रभु का यह जो अभीष्ट है, क्या अभीष्ट, कृष्ण
अनर्पित चरित्र स्वभक्ति से
ठहर जाओ कृष्ण परम दयालु
रसिक शेखर कृष्ण परम करुण,
शेखर कृष्ण
परम करुण,
परम करुण, यही दुई हेतु इच्छार उद्गम
प्रेम रस निर्यास
करिते आस्वादन
राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार।
यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो प्रेम रस का आस्वादन महाप्रभु जी कर लेते अकेले, ये संभव नहीं था। इसलिए अपने परिकरों के साथ में रूप गोस्वामी के साथ में आए। कैसे, इनके जो भाव थे ये सब भाव कहां से आए, स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर से दो पक्ष होता है, एक तो स्वरूप की धारा से आया और एक रा रामानंद के धारा से आया, दोनों धाराएं मिल गई और वो पूरा सब जितना उनका वैशिष्ट था रूप गोस्वामी गाया। इसलिए रूपानु को कहने में हम लोग इतना गर्व बोध करते हैं। इसके संबंध में हम लोग
मंदिर में
बतलाएंगे। आज यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अभी अंग्रेजी में अरण्य महाराज बोलते हैं।
चक्षुर्नलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य मनोविष्ट स्थापित तेन भूतले स्वयं रूप कदानय ददाति स्वाहुदान्तकम्। Srila Gurudev explained, Yang Kali Rupa Charnana Dharata Tan Braja Prema Mahanidhi Kutrika Kona Kapata Udharata. If Srila Rupa Goswami Pad had not appeared in this world, in this Kali Yuga, then even though Sri Chaitanya Mahaprabhu, he descended to this world bringing the Mahanidhi, the great treasure of Braja Prem, Unnata Ujjvala Rasa, yet it was locked in an iron chest. Who would have been able to open it? Sri Chaitanya Mahaprabhu kept the key with Srila Rupa Goswami Pad, and he was the one who opened the valuable treasure that was brought to this world by Sri Chaitanya Mahaprabhu. And therefore, in our sampradaya, in our line, all the Vaishnavas are very proud to aspire to be a Rupanuga, the followers of Srila Rupa Goswami. In this kirtan, it is stated that just as there are so many different types of flowers in the forest, Beli, Chameli, Jivi, yet who can understand the glory of these flowers? Unless the bumblebee will come and collect the nectar from them and make honey, then others cannot understand the contribution of these flowers. So in the same way, here Radha Krishna or Sri Chaitanya Mahaprabhu, they are Prem Swarup. But who would understand the glories of Radha Krishna, the glory of Sri Chaitanya Mahaprabhu, unless the bumblebee, Srila Rupa Goswami Pad, collected the nectar of their hearts and distributed that flavor to others? Who would have understood the glories of Srimati Radhika's Unnata Ujjvala Rasa, Parikya Bhav? That means the relationship with Krishna, but not being married to him, Parikya Bhav. Who would understand it? All the people of the world thought that this unwedded relationship, paramour love, was something quite abominable, something despicable. But it was Srila Rupa Goswami Pad who cut away all their false conceptions and established that this is the supreme, highest pinnacle of transcendental love. Srila Rupa Goswami Pad established the purity of this prem through his books such as Sri Bhakti Rasamrita Sindhu and Sri Ujjvala Nilamani. Most had the conception that the married relationship between Krishna and Rukmini, Satyabhama and the queens of Dwarka, oh, this was wonderful and the highest thing and superior to the love of the gopis. Even the pandits of Ramanuja Sampradaya in Jaipur, they had Srimati Radhika removed from the temple of Sri Govindadev. But our Srila Vishnu Chakri Thakur sent Sri Gaudiya Vedanta Acharya, Srila Baldevi Dabhushan, there to Jaipur, and he cut all the arguments of those pandits and re-established the worship and the superiority of the worship of Sri Sri Radha and Krishna. So what is this? These are all the glories of Srila Rupa Goswami Pad. So Srila Raghunath Das Goswami, he has stated, Adadana Stinam Danta Idam Jache Puna Puna Srimad Rupa Padam Bojo Dulisham Janma Jamani. Birth after birth, I take the straw between my teeth and I beg again and again. Oh, Sirupa, please accept me like dust at your lotus feet, birth after birth. So all of our acharyas, they have followed this mood. We should know that Sri Rupa Manjari, she has thousands and thousands and millions of endless transcendental qualities. And all of those transcendental qualities of Sri Rupa Manjari, they are present in Srila Rupa Goswami Pad, because she has appeared in this swarup, this form, as Srila Rupa Goswami Pad. Yet, there is a quality in Srila Rupa Goswami Pad, not present, Sri Rupa Manjari. What is that? We see that Sri Rupa Manjari, though she has served and shown the way of service to her associates in Radha Krishna Leela, in this service of Radha Krishna, but Sri Rupa Manjari has not shown the method by which the fallen conditioned souls of Kali Yuga can gradually progress through the stages of bhakti, through sadhan, sadha, sadhu sangha, bhajana kriya, natanviti, nishta, ruchi, asakti, bhava, prem. She has not shown that path by which the fallen conditioned souls of Kali Yuga can attain the premoya seva of the lotus feet of Srimati Radhika. So this quality is there in Srila Rupa Goswami. Sri Krishna himself has not explained it. Radharani himself has not explained it. Sri Rupa Manjari has not explained it. Only Srila Rupa Goswami Pad has explained how to attain this special love. Before Srila Rupa Goswami Pad, people did not know how to discriminate between the mixed bhakti and transcendental bhakti, sudden bhakti, bhava bhakti, prema bhakti, and in this prema bhakti, the speciality of Madhurya Rasa, and in this Madhurya Rasa, the difference between Sambhog Ichamai of the heroines, Krishna's heroines, and Tatat Bhav Ichamai of the sakis of those heroines, and within those who have Tatat Bhav Ichamai, those who have Bhavalas, permanent mood of loving friendship to Radhika, always in the higher position to the love and friendship with Sri Krishna. So it was Srila Rupa Goswami Pad who taught his Anugadhyam, how to discriminate and understand this highest goal of Unnata Ujjvala Rasam Swabhakti Sriyam, that is the service in the mood of Tatat Bhav Ichimai, especially Bhava Lasarati. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, why did he come to this world? Prema Rasa Nirjas Karite Ashwadan Ragamaga Bhakti Loke Karite Pratyan. He came to taste the very essence of prema rasa and to distribute raga marga bhakti. But could he have done this without his parikars? He could have neither tasted the prema rasa nirjas, or he could not have distributed raga marga bhakti, neither, without his associates. And therefore it is stated, Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swamrupakadamajam Tadati Swapadantikam. When will Srila Rupa Goswami Pad give me the shelter of his lotus feet? Because he is that person who realized the Manobishta, the innermost heart's desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu, what? Premarasa Nirjas, to taste the essence of Premaras and to distribute Raga Marga. He understood the Sri Chaitanya Manobishta and also Stapitam Jena Bhutale. He established that Manobishta of Chaitanya Mahaprabhu within this world. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he relished the prema rasa, taking the help of his very intimate associates, Sri Sarup Damodar Goswami and Sri Rai Ramananda. So, Sri Sarup Damodar Goswami assisted Chaitanya Mahaprabhu according to his mood. And Sri Rai Ramananda assisted Sri Chaitanya Mahaprabhu according to his mood. But the specialities of the mood of Srila Rupa Goswami, Srila Sarup Damodar, that is Lalita Sakhi, and Rai Ramananda Vishaka Sakhi, both combined together, were manifested in the heart of Srila Rupa Goswami Pad, and he has distributed